आज होटल में जो भी हुआ था वो प्रार्थना और नवीन ने अपनी आंखों से देखा था, और साथ ही उन्हें काफी कुछ चीजें समझ भी आ गई थी। घर जाकर दीवा ने उन्हें सारा सच बता दिया था। दीवा अब आर्यन से दूर रहना चाहती थी। उसके इस फैसले में नवीन और प्रार्थना उसका पूरा साथ दे रहे थे। दीवा अपने कमरे में सोने चली गई थी तो वहीं नवीन पूरे घटनाक्रम के बारे में सोच रहा था। आर्यांश की आंखों में एक अलग ही जुनून दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो दीवा को हासिल करने के लिए किसी भी पागलपन की हद तक पहुंच जाएगा। ऐसे में नवीन को दीवा की चिंता होने लगी। भले ही ये उनके लिए एक मुश्किल फैसला था, लेकिन उन्होंने दीवा के भविष्य के लिए यही फैसला लिया कि अब उन्हें ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। हालांकि ऐसा करने पर उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना होगा, पर दीवा की खुशी के लिए उन्हें आर्यांश से दूर जाना ही था। नवीन ने प्रार्थना को सब कुछ समझाया तो वो भी दीवा की खुशी के लिए तैयार हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ वर्तिका के घर पर सहर, वर्तिका और श्रेष्ठ तीनों साथ में बालकनी में बैठे हुए थे। वे साथ में अच्छा टाइम बिता रहे थे। बातों ही बातों में पिछले 5 सालों में सहर के जाने के बाद क्या हुआ था वो श्रेष्ठ और वर्तिका ने कुछ हद तक सहर को बता दिया था। उन दोनों ने सहर को अपने रिश्ते के बारे में भी बताया था। इस वक्त वर्तिका श्रेष्ठ का हाथ पकड़कर उसके करीब बैठी हुई थी। सहर मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रही थी। उसने कहा, तो तुम दोनों साथ में हो? मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम दोनों एक साथ मुझसे मिलने के लिए आए थे और तुम दोनों कितना झगड़ा कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों साथ में आओगे, लेकिन मैंने हमेशा सोचा था, वर्तिका ने मुस्कुराकर कहा और फिर श्रेष्ठ के हाथ पर हल्का सा किस कर दिया था। उसने श्रेष्ठ की आंखों में देखते हुए आगे कहा, मैं इसे बचपन से ही पसंद करती थी, पर किसे पता था कि इतना टाइम लगेगा। ऊपर से इसने किसी और से सगाई भी कर ली थी। हाँ, उस सगाई को तोड़ने के बाद मेरे पेरेंट्स अब तक मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। अजीब बात है, उन्हें वर्तिका पसंद है लेकिन वे मुझसे नाराज हैं, श्रेष्ठ ने मुंह बनाकर कहा, जिस पर सहर और वर्तिका एक साथ हंस पड़ी थी। रुको, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ कि क्या हुआ था, श्रेष्ठ बोला और सहर की तरफ देखकर बात करने लगा। उन दोनों के बीच वर्तिका बिल्कुल चुप थी और एक पल के लिए वो मायूस भी हो गई थी। अनजाने में उसे वो लम्हा याद आ गया था जब वो आर्यांश के घर पर पहुंची थी। वहां दीवा से उसकी दूसरी मुलाकात हुई थी और उसे दीवा आर्यांश के लिए सच में बहुत पसंद आई थी। दीवा और उसका रिश्ता भी काफी अच्छा था। ऐसा नहीं था कि वर्तिका को सहर से कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन हाँ, वो आर्यांश और दीवा को ही साथ देखना चाहती थी। बात करते हुए अचानक सहर की नज़र वर्तिका की तरफ गई। वो खोई हुई लग रही थी तो सहर ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अब मैं तुम दोनों लव बर्ड्स के बीच में दखल दे रही हूँ। तभी वर्तिका कुछ बोल नहीं रही है, वैसे मुझे मेडिसिन लेकर सोने ही जाना है, तुम दोनों एंजॉय करो। सहर उठने को हुई तभी वर्तिका बोली, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस अचानक मुझे किसी की याद आ गई थी और मैं उसके बारे में सोचने लगी थी। श्रेष्ठ ने गहरी सांस लेकर वर्तिका की तरफ देखा। उसने वर्तिका के हाथ को धीरे से सहला दिया था। वो जानता था कि इस वक्त वर्तिका दीवा को ही मिस कर रही होगी। सहर ठीक कह रही है, काफी रात हो गई है, अब हमें भी सोने जाना चाहिए, श्रेष्ठ ने कहा। वो कब से वर्तिका से अकेले में बात करना चाहता था और जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वो कॉल पर रो रही थी और उसने श्रेष्ठ को अपने पास बुला लिया था। सहर को गुड नाइट विश करने के बाद श्रेष्ठ वर्तिका के साथ उसके कमरे में आ गया था। रूम के अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और वर्तिका की तरफ देखा। जब आर्यांश ने अपने गुस्से में वर्तिका को थप्पड़ लगाया था तो उसके गालों पर आर्यांश की उंगलियों की छाप पड़ गई थी। वर्तिका ने अपने गालों को बालों से कवर कर रखा था। श्रेष्ठ वर्तिका के करीब आया और अपनी आदत के मुताबिक उसने उसके बालों को कानों के पीछे किया। हालांकि वर्तिका ने उसे रोकना चाहा था, लेकिन श्रेष्ठ ने यह काफी जल्दी में किया कि उसे कुछ समझ नहीं आया या रोकने का मौका नहीं मिला। जैसे ही श्रेष्ठ की नज़र वर्तिका के गाल पर गई, उसे समझते देर नहीं लगी थी। वो ऐसा कैसे कर सकता है, श्रेष्ठ गुस्से से दांत भींचते हुए बोला। वो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन, वर्तिका बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन श्रेष्ठ ने उसे बीच में काटते हुए कहा, और प्लीज तुम अपने भाई की साइड लेना बंद करोगी, आजकल वो कुछ ज्यादा ही अजीब और पागलपन वाली हरकतें कर रहा है। उसने तुम पर हाथ उठाया और उसकी हिम्मत कैसे हुई, क्या मॉम को इस बारे में पता है? किसी को कुछ पता नहीं है और प्लीज उन्हें बताना भी मत, वर्तिका ने उसे शांत करते हुए कहा। कुछ पल रुककर वो परेशान चेहरे के साथ गहरी आवाज में बोली, देखा जाए तो इस वक्त मुझे खुद से ज्यादा चिंता दीवा की हो रही है। पहले भाई ने उसे सबके सामने इंसल्ट किया और अब उन्हें ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज हुआ है कि उन्हें दीवा से प्यार है। क्या वो कोई खिलौना है जिसे कोई इमोशंस फील नहीं होते? पहले उन्होंने उसका दिल दुखाया और अब उसके लिए उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। इन सब में अगर सबसे ज्यादा कोई हर्ट हो रहा है तो वो दीवा है, और सच में मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है।
क्या तुम भाई को समझा नहीं सकते? बेशक समझाता अगर उसने तुम पर हाथ नहीं उठाया होता। और उसे ये हक किसने दिया? लिसन वर्तिका, कल ही तुम सहर से दीवा के बारे में बात करोगी और उसे आर्यांश और दीवा के रिश्ते के बारे में बताओगी। मुझे लगता है कि वो कुछ नहीं जानती है। जैसा पागलपन भरा व्यवहार तुम्हारा भाई कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो उसे कभी सच बताना चाहेगा। अब से तुम आर्यांश के मामले से दूर रहोगी और मैं उससे बात कर लूंगा कि वो तुम्हारे घर पर ना आए, श्रेष्ठ ने तेज आवाज में कहा। जब से श्रेष्ठ ने वर्तिका के गाल पर उंगलियों के निशान देखे थे और उसे ये पता चला था कि आर्यांश ने उसे मारा है, उसके बाद से श्रेष्ठ बहुत गुस्से में था। उसने यही सोचा था कि वो आर्यांश से कभी बात नहीं करेगा। वर्तिका ने सोचा था कि वो श्रेष्ठ को बुलाकर पूरी बात बताएगी ताकि वो मामले को संभाले, लेकिन श्रेष्ठ तो उससे बात तक करने से इनकार कर रहा था। गलती उसकी भी नहीं थी। अगर वर्तिका और श्रेष्ठ रिलेशन में नहीं होते, तब भी अगर श्रेष्ठ को पता चलता कि आर्यांश ने वर्तिका पर हाथ उठाया है, तो वो तब भी ऐसे ही रिएक्ट करता। वर्तिका ने कुछ नहीं कहा और वो श्रेष्ठ के गले लग गई थी। उसने आंखें बंद करके धीमी आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन सहर को अभी कुछ मत बताना। उसकी अभी अभी रिकवरी हुई है और हम नहीं जानते कि हमारी बातों का उसकी हेल्थ पर क्या असर होगा। हो सकता है इसी वजह से आर्यांश ने अब तक कुछ नहीं बताया होगा। तुम्हें जो भी ठीक लगे वो मुझे मंजूर है, पर मैं आर्यांश से बात नहीं करने वाला हूँ, श्रेष्ठ बोला। वर्तिका ने सिर हिलाकर उसकी बात पर हामी भरी। श्रेष्ठ ने उसे बेड पर लिटाया और फिर प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा था। कुछ ही देर में वर्तिका सो गई थी, तो वहीं श्रेष्ठ के चेहरे पर गहरी चिंता के भाव थे। उसे आज भी वो वक्त याद था जब सहर के मरने की खबर पर आर्यांश किस हद तक पागल हो गया था। वो शुरुआत के एक साल में खुद को इस हद तक शराब के नशे में डुबोकर रखता था कि आखिर में उसकी तबीयत खराब रहने लगी और डॉक्टर ने उसे ड्रिंक करने से मना कर दिया था। जब उसने खुद के होश संभाले तो उसे सहर की मौत की तह तक जाना था और इस बीच दीवा का नाम सामने निकल कर आया था। बदला लेने के लिए आर्यांश उसके करीब गया और चीजें इस तरह खत्म होंगी किसी ने नहीं सोचा था।
तुम क्या बन गए हो आर्यांश? मैंने तुम्हारी आंखों में दीवा के लिए प्यार महसूस किया था। आज भी मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब प्रियंक ने सहर की फोटो लगाई थी और तुम मेरे पास आए थे। तब दीवा का नाम आने पर तुम सब कुछ छोड़कर उसके पास पहुंच गए थे, क्योंकि तुम्हें सच में उसकी फिक्र थी। अगर इतना ही प्यार था तो क्यों तुमने उसका दिल दुखाया? और अब अगर सहर तुम्हारी जिंदगी में वापस आ भी गई है, तो चीजों को सही तरीके से सॉल्व करने के बजाय तुम सब कुछ बिगाड़ रहे हो। तुम खुद को और दीवा दोनों को हर्ट कर रहे हो, और इस चक्कर में तुमने वर्तिका को भी बेवजह घसीट लिया, श्रेष्ठ ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढकते हुए कहा। उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए बुरा लग रहा था। अगली सुबह दीवा सुबह के 9 बजे के करीब अपने कमरे से फ्रेश होकर बाहर निकली, तो उसके कमरे के आगे नवीन परेशानी में इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे, जबकि प्रार्थना अंदर पैकिंग करने में लगी हुई थी। उन्हें बस दीवा के उठने और अपना फैसला सुनाने का ही इंतजार था। दीवा ने एक नज़र नवीन की तरफ देखा, वे तैयार हुए थे। दीवा ने उलझन भरे स्वर में पूछा, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, सिर्फ मैं नहीं, हम सब जा रहे हैं। लगभग सब कुछ प्रार्थना पैक कर चुकी है, तुम भी ब्रेकफास्ट करके अपना सामान पैक कर लो, नवीन ने सख्त आवाज में कहा। सारा सामान पैक करने से आपका क्या मतलब है? किसी लंबे ट्रिप के लिए निकल रहे हैं, 2 दिन बाद हमारे केस की हियरिंग है, और आप इस तरह बीच में कहीं कैसे जा सकते हैं? दीवा ने हैरानी भरे स्वर में कहा। हम कोई लीगल फाइट नहीं कर रहे हैं, बस हमें यहाँ नहीं रहना। कंपनी का सारा काम और बाकी चीजें मेरे पीछे से हमारे मैनेजर देख लेंगे, और मैंने उन्हें सब समझा भी दिया है। हम हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं, और मुझे किसी तरह की बहस नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो इंसान आगे से तुम्हारे आसपास आए और तुम्हें नुकसान पहुँचाए। नवीन ने अपने इरादे खुलकर दीवा के सामने रख दिए थे, और इस वक्त उनके चेहरे के भाव बेहद सख्त थे। उनके इस फैसले का कारण दीवा अच्छे से समझ सकती थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, तो आप ये सब आर्यांश की वजह से कर रहे हैं? कल मैंने उससे बात की थी और वो सब ठीक करने के लिए तैयार है। मुझे उससे कुछ भी ठीक नहीं करवाना है दीवा, तुम नादान नहीं हो, और तुम खुद देख सकती हो कि आर्यांश का प्यार पागलपन में बदल गया है, और वो ऐसे में तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा। बेहतर यही होगा कि यहाँ से चलते हैं, कुछ देर में हमारी फ्लाइट है, नवीन ने उसे समझाया। दीवा ने बिना कुछ कहे नामे सिर हिला दिया था। करुण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किस तरह पब्लिक ओपिनियन और बाकी चीजें बदल गई थी, वो उसने खुद चेक किया था। इतनी दूर आने के बाद दीवा अपने कदम पीछे नहीं ले सकती थी। अगर बात उसके फ्यूचर से जुड़ी होती या उसके करियर का फैसला लेना होता, तो शायद वो आर्यांश को छोड़कर दूर जाना पसंद करती, लेकिन यहाँ बात उसके पेरेंट्स और उनकी जिंदगी भर की मेहनत की थी। वो मुझे कुछ नहीं करेगा, और मैंने उससे कल बात कर ली है, वो मुझसे दूर रहेगा, दीवा ने सख्त आवाज में कहा। दीवा, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। आज तक मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया है और तुम्हारी हर जिद को माना है, लेकिन ये नहीं सुनने वाला, नवीन ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रार्थना तुरंत बाहर आ गई थी। जिस तरह से वे दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे, प्रार्थना समझ गई थी कि दीवा ने जाने से मना कर दिया था।
तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीवा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, प्रार्थना ने उसे समझाते हुए शांत आवाज में कहा। आप कब से गिव अप करने लगी मॉम, दीवा ने प्रार्थना की तरफ देखकर कहा। जब तक मैं नहीं चाहूंगी आर्यांश मेरे करीब कभी नहीं आएगा और ना ही मुझे चोट पहुंचा पाएगा। उसने मुझे जितना हर्ट करना था वो पहले ही कर चुका है और अब मुझे उसके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता है। मैं वापस नहीं जा रही हूं और मुझे किसी भी हाल में हमारी कंपनी वापस चाहिए। मैं बिजनेस सीखना चाहती हूं और आपका हाथ बटाना चाहती हूं। दीवा ने अपना नया फैसला सुना दिया था, जिसे सुनकर एक पल के लिए नवीन और प्रार्थना चौंक गए थे। नवीन को गुस्सा आ रहा था और अब उनके लिए दीवा को समझाना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने प्रार्थना की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, तुम ही समझाओ इस लड़की को जो एक के बाद एक बेवकूफियों पर उतर आई है। इसे बिजनेस ज्वाइन करना है जहां इसका सामना उसी इंसान से होता रहेगा। तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम्हें उससे दूर जाना है या उसके करीब होना है। मुझे उससे दूर जाकर खुद को कमजोर साबित नहीं करना है। मैं उसकी आंखों के सामने रहकर उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाऊंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। क्या आप उसकी तरह मुझे कमजोर समझ रहे हैं, दीवा ने जिद में आकर कहा। नवीन ने गहरी सांस ली। अब उनकी बहस करने की हिम्मत नहीं बची थी। मजबूरी में उन्हें दीवा का फैसला मानना ही पड़ा, हालांकि वे अभी भी दीवा के बिजनेस सीखने के खिलाफ थे। देखते ही देखते पूरा एक महीना बीत गया था। आर्यांश ने गोयनका फैमिली की मदद करने की कोशिश की, पर उन्होंने सीधे सीधे हेल्प लेने से मना कर दिया था। नतीजा, वो दूर रहकर ही उनकी हेल्प कर रहा था। अभी तक गोयनका इंडस्ट्री उस नुकसान से उभरी नहीं थी, पर हाँ, उन्हें उनका घर मिल गया था और अब उन्हें छुपकर रहने की जरूरत नहीं थी। वहीं दीवा ने नई शुरुआत करते हुए समय की कोचिंग क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिया था। इस एक महीने के दौरान आर्यांश एक बार के लिए भी दीवा के सामने नहीं आया था, पर हाँ, वो दूर से उसके ऊपर नजर बनाए हुए था। आखिरकार दीवा को उसकी नॉर्मल जिंदगी वापस मिल ही गई थी।